दुनिया में सबसे सस्ती दवाई कौन सी है? सबसे सस्ती दवाई, उससे एक्सरसाइज भी है, लेकिन हैप्पीनेस इज द चिपेस्ट बट द मोस्ट पोटेंट मेडिसिन फॉर ऑल एलिमेंट्स। खाली डायबिटीज के लिए नहीं, सारी बीमारियां, जितने प्रकार की बीमारियां हैं, सब बीमारियों के लिए एक ही दवाई, वो है खुशी। सतयुग त्रेतायुग में लोग बीमार नहीं होते थे, इसका कारण था सब खुश थे, जिसका चेहरा देखो खिला हुआ। आज कलयुग में भले अरबपति खरबपति करोड़पति, लेकिन चेहरा देखो तो चमन्नी जैसे खो दिया कहीं। तो इसलिए जीवन में खुशी जैसी खुराक नहीं कहा जाता है, लेकिन मैं कहूंगा खुशी जैसी दवाई नहीं, सबसे बढ़िया दवाई है खुशी। आप खुश रहो, देखो सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब नहीं कि ब्लड शुगर भी चेक नहीं करो, नहीं, चेक करना जरूरी है, तो ही जाके पता चलेगा कि आपका क्या है। देखिए आज अभी सुनेंगे हम ड्रग ट्रीटमेंट इन डायबिटीज। वास्तव में दवाइयां ये बहुत टेक्निकल है, आपके सब कुछ बातें समझ में कितना दूर तक आएगी मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन प्रयास करूंगा आपको बहुत सरल सिंपल भाषा में समझा दूं, ताकि ये दवाइयां कैसे हैं। कई लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब ये दवाई खाने से पहले खाऊं या खाने के बाद में खाऊं, ठंडे पानी से पीऊं खाऊं कि गर्म पानी से खाऊं, तो कई प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं, तो ये मैं आपको समझा देता हूं। आपको ये चित्र बार बार इसलिए दिखा रहा हूं, क्यों? क्योंकि दवाई का जितना महत्व है, खान पान का भी उतना महत्व है, और एक्सरसाइज का भी उतना ही महत्व है। ये तीनों बातों का संतुलन आप अगर नहीं रखेंगे तो आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए रोज एक्सरसाइज तो करना ही है, खान पान का परहेज तो करना ही है, परंतु जो उचित दवाई जो आपको लेना चाहिए वो भी आपको लेना चाहिए। लेकिन दवाई कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है वो आपके हाथ में नहीं है। एक्सरसाइज और खान पान तो बता दिया, लेकिन अभी दवाई का ट्रीटमेंट कैसा लेना है क्या लेना है वो वास्तव में आपके ट्रीटिंग फिजिशियन के हाथ में है, वही आपको उचित दवाई दे सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी, मुझे कहना अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन एक अप्रिय सत्य बता रहा हूं, आप सभी को डायबिटीज के बारे में नॉलेज नहीं होना सिंपल बात है, सरल बात है, सहज कॉमन बात है, आपको वी डू नॉट एक्सपेक्ट ऑल्सो कि आप सभी बातें जाने, परंतु ऐसी एक अवस्था है, मैं अगर डॉक्टर्स को भी बुला के पूछूंगा मैं कहूंगा 90% डॉक्टर्स भी डायबिटीज के बारे में बहुत बातें नहीं जानते हैं, बहुत बातें पता नहीं। मैं डायबिटीज जब मास्टर डिग्री नहीं किया था मुझे कितना पता था मैं भी जानता हूं, तो मेजोरिटी डॉक्टर को डायबिटीज के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है। हम सभी जनरल रूप में सब कुछ पढ़ते हैं, इसलिए कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नॉन, परंतु जो स्पेशलाइजेशन करता है जिस बात में उसको वो बात का संपूर्ण नॉलेज रहता है, मैक्सिमम नॉलेज रहता है। जैसे आपको दांत का प्रॉब्लम होता है तो किसे ट्रीटमेंट कराते हैं, आंखों का प्रॉब्लम होता है तो किसे ट्रीटमेंट करते हैं, कान का प्रॉब्लम होता है तो कहां जाते हैं, लेकिन डायबिटीज प्रॉब्लम होता है तो किसी के भी पास। वो नाई भी बोलेगा मधुनाशिनी खाओ तो खा लेंगे, और रास्ते में बस में जाते समय अच्छा आपको भी डायबिटीज क्या, अरे मैं ये गोली खाती हूँ ये बहुत अच्छा है ये गोली खा ले, खा लेंगे बिना डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन, तो कैसे होगा, क्या हाल होगा, सोचिए तो सही। अगर आप प्रॉपरली इलाज करना चाहते हैं तो कोई डायबिटोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। लेकिन और एक दुख की बात है कि हमारे देश में कोई भी डायबिटोलॉजिस्ट अगर देखेगा 5 मिनट देखेगा लेकिन 1000 रुपया फीस लेगा, इसलिए बहुत कम लोग एफर्ड कर पाते हैं, उनसे दिखाने के लिए साहस रखते हैं। फिर जो भी जनरल प्रैक्टिशनर से जो बैठे हैं, सर्दी जुकाम खांसी बुखार देखते हैं, चलो भाई शुगर की गोली, वो भी लिख देगा गोली जाओ, जिसके कारण आज ऐसी दुरावस्था हो रही है। आज सभी को कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, प्रॉपर दवाई ठीक नहीं है, राइट दवाई नहीं है, लिखते तो अधूरा लिखते हैं, पूरी चेकिंग नहीं करते हैं, जब पेशेंट आता है कॉम्प्लिकेशन होकर आता है। मैं देखता हूं बहुत सारे पेशेंट्स में जब देखता हूं इतने कॉम्प्लिकेशंस लेके, और जब मेडिसिन देखता हूं किसने ट्रीटमेंट किया कौन देखता हूं, मुझे बहुत दुख होता है। तो इसलिए अगर आप सचमुच डायबिटीज के साथ हेल्दी रहना चाहते हो, ठीक रहना चाहते हो, सारा जीवन भर ठीक रहता हो, एक बार खर्चा करना पड़ेगा, वो भी क्या खर्चा है मैं आपको बताया, यहाँ दिल्ली में आपका एक दिन का 7,000 रुपया। तो अगर वहां सिंगल रूम की भी फैसिलिटी है, अगर कोई सिंगल रूम लेना चाहता है फैमिली के साथ रहेगा तो 12-13 हजार रुपया पड़ता है। डिलक्स रूम भी है, सुपर डिलक्स रूम भी है, जो ऐसे ही बहुत पेशेंट आते हैं जो जिनको पैसा वाले हैं डिलक्स रूम लेके रखते हैं, लेकिन मिनिमम आपको खर्चा बताया कि 7-8 हजार रुपया पड़ता है। फिर भी कोई एफर्ट नहीं कर पाता है तो मैं जनरल वार्ड में भी रखता हूं, उसको 3-4 हजार रुपया खर्च होता है। इतना तक भी बाबा के घर में ग्लोबल हॉस्पिटल में फैसिलिटी है। मेरा कहने का मतलब है, आपको अगर सचमुच आप सुखी जीवन जीना चाहते हो, फालतू लोगों से बचना चाहते हो, आपको आज लोग कमर्शियल है कहीं ना कहीं भटकाते रहते हैं, माउंट अबू आते हैं तो आइए। मैं दिल और जान से, आप मेरे भाई बहने हो, मैं अपने सचमुच बता रहा हूं, अपने भाई बहन को मैं जैसा देखूंगा, मेरे माँ बाप को जैसे देखूंगा, ऐसे ही आपको देख के सही सलाह आपको ठीक से दवाई लेके आपको भेजूंगा, ठीक है? यही मेरी संभावना है। तो देखिए, आपको उचित दवाई लेना भी बहुत जरूरी है, लेकिन कौन सी दवाई लें क्या लें लोगों को नहीं पता होता है, आपको पता नहीं होना स्वाभाविक है। बहुत डॉक्टर्स को जब पता नहीं तो आपको क्या पता होगा। तो देखिए, पहले जमाने में डायबिटीज का कारण सोचते थे कि किडनी में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां से शुगर लीक हो रहा है, यूरिन में शुगर लीक हो रहा है, तो पहले सोचते थे कि किडनी की बीमारी है, परंतु वास्तव में नहीं। डायबिटीज पता चला कि हमारे पेट के अंदर एक ग्रंथि है जिसको अग्नाशय कहते हैं, उसमें इंसुलिन ठीक से नहीं बन पा रहा है। इंसुलिन या तो बनता नहीं है ठीक से, बीटा सेल डिसफंक्शन है, या इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है, जिसके कारण डायबिटीज हो रहा है। परंतु अभी देखा गया कि और एक चीज है जिसको इनक्रेटिन हार्मोन कहते हैं, हमारे आंतड़ी में और एक प्रकार के हार्मोन बनते हैं जिसको इनक्रेटिन हार्मोन है, उसमें भी कई प्रकार की बातें हैं जो जिसके कारण शुगर की इस जो मात्रा जिसे कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आपको बताया था, डायबिटीज इज ए मल्टी हार्मोनल डिजॉर्डर, अर्थात अनेक प्रकार के हार्मोन्स की, कई बार हमारे ग्लूकागन और एक जो शुगर को बढ़ाता है वो भी एक्सेस रहता है, तो कई प्रकार की बातें होती है जो इसको समझ चाहिए, इस बीमारी को कैसे कंट्रोल में रखा जाए समझ चाहिए। देखिए, जब भी हम भोजन खाते हैं, वो भोजन खाते ही हमारे पेट के अंदर जाके इससे शुगर बनता है, और जब शुगर बनता है हमारे यहाँ अग्नाशय से इंसुलिन भी खून में आता है, ये दोनों खून में जाते हैं, और ये शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये इंसुलिन काम करता है। तो डायबिटीज में वास्तव में जब शुगर हाई हो जाता है, एक्चुअली होता क्या है, हमारे पेनक्रियास से इंसुलिन ठीक से बनता नहीं है, जब ठीक से नहीं बनता है तो खून में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। हमारे जो लीवर है, ये लीवर एक स्टोर जैसा काम करता है, हम खाना खाने के बाद आंतड़ी से एब्जर्व होके सारा शुगर जाता है लीवर में, स्टॉक होके जमा होता है, और वहां से जब हम खाना नहीं खाते हैं वहां से शुगर धीरे 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 फिर खून में मिलता रहता है, तो शुगर की मात्रा मेंटेन होके रहता है। जब इंसुलिन ठीक से नहीं सिक्रीशन होता है तो ये लीवर से ज्यादा ही शुगर निकलने लगते हैं, और पेनक्रियास में और एक हार्मोन है जिसको ग्लूकागन कहते हैं, ये भी लीवर को स्टिमुलेट करता है ज्यादा शुगर बनाने के लिए। और जब इंसुलिन कम हो जाता है, हमारे मांसपेशी में, हमारी चर्बियों में जो ग्लूकोज यूटिलाइज होना चाहिए वो भी यूटिलाइज नहीं हो पाता है, यूज नहीं हो पाता है, जिसके कारण शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसलिए देखिए, जो भी हमारी दवाइयां हैं, जितने प्रकार की दवाइयां हैं, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो हमारे पेनक्रियास जहां से इंसुलिन बनता है उसको धकेलते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं ताकि ज्यादा इंसुलिन बने, उसको हम सिक्रेटोगॉग्स कहते हैं। आप जो डाउनिल लेते हो या जीमर लेते हो, कई प्रकार की दवाई, वो पेनक्रियास को धकेलता है जिससे इंसुलिन बनता है। दूसरे होते हैं इंसुलिन सेंसिटाइजर, अर्थात इंसुलिन आपके शरीर में है लेकिन काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो वो इंसुलिन को काम कराने में, सेंसिटाइज कराने में मदद करते हैं, उसको हम सेंसिटाइजर कहते हैं। ये सारी दवाइयां आपको याद नहीं रहेगी, इसमें एक एक ग्रुप में फिर कई प्रकार की दवाई है, क्लोरप्रोफामाइड, ग्लिबेंक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिमेपराइड, ये सब कहां याद रहेगा, हमको भी याद नहीं रहता है तो आपको कहां याद रहेगा। तो मैं ये सब डिटेल नहीं बता रहा हूं, आपको सार समझ जाइए। कुछ दवाइयां होते हैं जो आपके पेनक्रियास को धकेलते हैं जहां से इंसुलिन बनता है, और कई दवाइयां होते हैं वो इंसुलिन को काम करने में मदद करते हैं, उनको सेंसिटाइजर कहते हैं। और कई दवाइयां होती हैं जो आपके पेट में जब खाना खाते हैं वो आंतड़ी से शुगर को एब्जर्ब करने में थोड़ा सा रोकते हैं। आपने खाना खाया वो शुगर तुरंत ही एब्जर्ब होकर खून में मिल गया तो शुगर तो एकदम शूट हो जाएगा, तो उसको रोकते हैं। जैसे मेथी का पाउडर बताया, आप मेथी खाते ही आपके पेट में आंतड़ी में एक कोटिंग कर देगा, तो आप जो खाते हैं उसमें शुगर धीरे 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 एब्जर्व होगा, फट से एब्जर्व नहीं होगा। तो ऐसी दवाई है जो ये काम करते हैं। चौथे प्रकार की दवाई है जो इनक्रेटिन बताया, इनक्रेटिन हार्मोन आंतड़ी के अंदर अभी रिसेंटली डिटेक्ट हुआ, पता चला, तो उसमें काम करते हैं। तो इतने सारे डिटेल तो आपको जानना जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कुछ दवाइयां हैं जो पेनक्रियास को धकेलते हैं, इंसुलिन बनाने में मदद करते हैं, कुछ दवाइयां हैं जो लीवर में, मसल्स में, चर्बी में इंसुलिन को काम करने में मदद करते हैं, कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जो बहुत मोटे हैं, बहुत खाते हैं, शुगर कभी कंट्रोल नहीं, उनको क्या करते हैं, उनको सर्जरी द्वारा उसके पेट को छोटा कर देते हैं, काट देते हैं, छोटा कर देते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं उसको। तो क्या होता है, हमारा पेट एक वास्तव में एक इलास्टिक बैग जैसा है, उसमें आप डालते जाओ वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। लोग तो 3 लीटर 4 लीटर भी खा लेंगे, पानी भी पी लेंगे, लेकिन उसको काट के छोटा करके इतना छोटा सा थैली बना देते हैं। तो आदमी जब खाता है इतना थोड़ा सा खाने के बाद जैसा लगेगा कि पेट भर गया मेरा, तो कम खाने से भी उसको पेट भर गया जैसा लगेगा, खाएगा नहीं, जब खाएगा नहीं तो वजन तो घट ही जाएगा। तो जो बहुत मोटे मोटे होते हैं 150 किलो 130 किलो 140 किलो उनका वजन कभी कंट्रोल नहीं हो रहा है, खाने पीने में बिल्कुल कंट्रोल नहीं, तो उनको सर्जरी करके उनका पेट को छोटा कर दिया जाता है ताकि इतना खा, बस इतना ही खाने के बाद उसका पेट भर जाएगा। तो वो भी एक प्रकार का इलाज है, लेकिन वो सर्जरी कॉस्टली भी है और खतरा भी है। जो बहुत मोटे होते हैं उनको सर्जरी करने में कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। चौथा है, हमारे ब्रेन में कई प्रकार के दवाई काम करते हैं। ब्रेन में हमारे एक सेंटर है जिसको हम एपिटाइट सेंटर कहते हैं, सेटाइटी सेंटर कहते हैं, तो जिसमें आपको खाने के बाद तृप्त हो जाएंगे, परितृप्ति हो जाएगी, कहते बस हो गया, संतुष्ट हो गए, तो वो सेटाइटी सेंटर को जल्दी वो स्टिमुलेट करके उसको सेचुरेट कर दिया जाता है। आप इतना खाने के बाद भी वो दवाई असर करेगा तो आपको लगेगा बस हो गया, तृप्त हो गया। जिसको सेटाइटी सेंटर नहीं तृप्त हुआ, इतना खाने के बाद कहेगा और भी कोई कुछ लाओ, कहेगा फिर खा लेगा, तो उसमें काम करते हैं। तो इस प्रकार कई तो आंतड़ियों में काम करते हैं, बताया कि उसमें एब्जर्ब होने नहीं देते हैं, या उसमें और कई हार्मोन्स हैं जिसमें काम करते हैं। तो ऐसे कई प्रकार की दवाइयां होते हैं, तो ये सब कई प्रकार की दवाई कहीं कहीं जगह पे ये सब काम करते हैं, और हर एक पेशेंट का अलग अलग है, हमें कहां प्रॉब्लम है, क्या है, हम देख के सिलेक्ट करते हैं। कोई बहुत मोटा है तो उसका अंदर इंसुलिन बनता होगा, लेकिन उसका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, तो उस समय अगर इंसुलिन को बनाने का, धकेलने का पेनक्रियास का दवाई दिया तो वो काम नहीं करेगा। कि मैं उसको इंसुलिन भी दे दूं, कितना भी 100 यूनिट तक, मैं कई मुझे दिखाए प्रेस्क्रिप्शन में देख रहा था, हैं इतने इतने मोटे लेकिन सवेरे 40 यूनिट शाम को 50 यूनिट इंसुलिन दे रहे, फिर भी कंट्रोल नहीं, वो इंसुलिन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इंसुलिन ऑलरेडी है शरीर में, इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। तो इनको इंसुलिन सेंसिटाइजर की दवाई चाहिए, वो देंगे तो कंट्रोल होगा। तो बहुत डॉक्टर को समझ नहीं है ये सारी बातें, वो कुछ भी आते हैं तो दवाई लिख देते हैं आपको, जाओ, नहीं कंट्रोल होता है। आजकल इतने प्रकार की वैरायटी दवाई हो गई है कि बहुत इसके बारे में गहन अध्ययन नहीं करेगा तो कभी समझ में नहीं आएगा, और कोई भी पेशेंट को कुछ भी दवाई लिखते रहते हैं जिसके कारण पेशेंट का शुगर कभी कंट्रोल नहीं होता है, और जब कंट्रोल नहीं होता है फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है। एक बार कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया तो बात मत पूछिए जो हालत होती है। तो इसलिए प्रॉपर मेडिसिन कहां क्या देना है सिलेक्ट करना, वो हर एक की बस की बात नहीं है। देखिए, जब हम खाते हैं कुछ भी उसमें शुगर एब्जर्व होके लीवर में जाता है, लीवर से फिर रिलीज होके खून में जाता है, जिसको हिपाटिक ग्लूकोज आउटपुट कहते हैं, और हमारे नसों में जाके खून में शुगर बढ़ जाता है। तो हमारे पास कई ऐसे दवाई हैं जिनको हम सेंसिटाइजर्स कहते हैं, वो जाके क्या काम करते हैं, वो लीवर को जाके रोकते हैं, उससे शुगर ज्यादा खून में नहीं भेजो, उसको रोकते हैं, तो उसको फिर हिपाटिक ग्लूकोज आउटपुट कम हो जाता है, तो खून में शुगर मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार दूसरे प्रकार की दवाई देखिए, जैसे मेटफॉर्मिन, आप नाम सुने होंगे, ग्लाइसीफेज, ग्लाइकोमेट, ये सब मेटफॉर्मिन दवाई है। ये बहुत पुरानी दवाई है, 50 साल पुरानी दवाई है। ये बहुत अच्छी दवाई है, इससे वजन घटता है, उसमें शुगर भी कम होता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाता है। परंतु ये दवाई बहुत लो पोटेंसी की है, शुगर की मात्रा थोड़ी कम है तो वो काम करती है, लेकिन इसमें पूरा एकदम बहुत ज्यादा जिसकी है तो नहीं काम करता है। तो ये दवाई देने से हमारे लीवर और हमारे मसल्स, हमारे फैट सेल, इसमें सब काम करते हैं और इंसुलिन को काम करने में वो मदद करता है, इसलिए इसको इंसुलिन सेंसिटाइजर कहा जाता है। दूसरे प्रकार की दवाई है जिसको हम कहते हैं सिक्रीटोगॉग, अर्थात जैसे आंतड़ी से पेनक्रिया से इंसुलिन ठीक से नहीं बन रहा है, पेनक्रिया से जब इंसुलिन ठीक से नहीं बन रहा है, जो भी हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसमें जो शुगर जाता है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, हमारे खून में बहुत ज्यादा शुगर दिखता है। तो एक ग्रुप की मेडिसिन है जो पेनक्रियास को धकेलते हैं, वो पेनक्रियास को धकेलते हैं और इंसुलिन इसे बनाते हैं, तो फिर शुगर की मात्रा कंट्रोल हो जाती है। ये अलग प्रकार की दवाई है। तीसरे जो इनक्रिटिन आजकल आप खाते होंगे कई भाई बहन है, जेनुभिया नाम से, जेनुमेट, जेनुभिया ऐसे नाम से, जालरा, गालभस ऐसे नाम से दवाइयां हैं, अभी काफी महंगी है, एक एक गोली 40 रुपया, 30 रुपया ऐसे हैं। तो ये गोलियां क्या करती हैं, हमारे आंतड़ी में काम करती हैं और इंसुलिन को लंबे समय तक काम करने में मदद करते हैं। तो ये एक रिसेंट नई दवाई है, सिटाग्लिप्टिन उसका केमिकल नाम है, इसलिए सीता को दिखा दिया इसमें, वास्तव में ऐसे कुछ सीता की बात नहीं है, सिटाग्लिप्टिन है। तो कभी कभी दो तीन प्रकार की दवाई का मिक्सचर भी मिलता है जिसमें हमारे पेनक्रियास को धकेलने में काम करता है और इंसुलिन को सेंसिटाइजर काम भी करता है, दोनों दवाइयों को मिक्स करके भी हम कभी कभी देते हैं। लेकिन आज तक जितने भी दवाइयां मिलती है वो सारी दवाइयां जितने जगह दिखाया चारों तरफ काम नहीं करते हैं, इसलिए कभी हम दो दवाई तीन दवाई मिक्स करके भी देते हैं। लेकिन हमारा मेन एम है कि आपका शुगर कंट्रोल हो जाए। कोई बहुत मोटा है और उसको कोई प्रकार का निशानी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है उसको, कोई भूख नहीं, प्यास नहीं या किसी भी प्रकार का कंप्लेन नहीं है, लेकिन शुगर ज्यादा है, तो ऐसे मरीज को हम पहले कहते हैं उसको खान पान परहेज रखो, एक्सरसाइज करो और उसको बता देते हैं, डायबिटीज का एजुकेशन देते हैं कि भाई डायबिटीज क्या है, आपका शुगर अगर ज्यादा है तो क्या नुकसान होगा, पहले उसको एजुकेशन देते हैं, खान पान और एक्सरसाइज देके तीन महीना देखते हैं। तीन महीने के अंदर अगर वो वजन घटाता है, खान पान कंट्रोल करता है, उसका शुगर कंट्रोल हो गया तो हम कहते हैं चलो वो कंटिन्यू करो, फिर हर महीना दो महीने में कम से कम शुगर जांच करते रहो। लेकिन तीन महीने के बाद भी कोई नहीं परहेज किया, वजन नहीं घट रहा है, शुगर नहीं घट रहा है, तो हम उसमें फिर दवाई स्टार्ट करते हैं, मेटफॉर्मिन ऐड करते हैं, फिर देखते हैं, अगर फिर भी नहीं हुआ फिर दूसरी दवाई देते हैं, फिर भी नहीं हुआ तो तीसरी दवाई देते हैं। कोई अगर मोटा है परंतु उसको बहुत प्यास लग रहा है, बहुत भूख लग रहा है, बार बार टॉयलेट जा रहा है, बार बार फोड़े हो रहे हैं शरीर में, तो ऐसे लोगों को हम पहले एजुकेशन, डाइट, एक्सरसाइज और मेटफॉर्मिन जो सेंसिटाइजर है देते हैं, देखते हैं दो तीन महीना नहीं कंट्रोल हुआ, कंट्रोल हो गया चलो मॉनिटर करो, नहीं हुआ तो फिर पेनक्रियास को इंसुलिन धकलने वाली जो दवाई है वो देते हैं, उसमें नहीं हुआ तो और दवाई ऐड करते हैं, उससे भी नहीं हुआ तो फिर इंसुलिन बाद में देते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का अप्रोच रहता है। कोई नॉर्मल बॉडी वेट है लेकिन उसको भी ज्यादा प्यास, भूख ये सब लग रहा है, तो हम डाइट, एक्सरसाइज ये सब देके उसको इंसुलिन बनाने की जो दवाई है वो देते हैं, कंट्रोल हो गया ठीक है, नहीं कंट्रोल हो गया तो फिर दूसरी दूसरी दवाई देके देखते हैं, नहीं हुआ तो लास्ट में इंसुलिन देना ही पड़ता है। कुछ भी हो, कोई भी पेशेंट जब शुरू में आता है, पहले हम उसको खान पान परहेज, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं उसको, LSM, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, खाना पीना परहेज ये सब चीजें पहले बता के दो तीन महीना देखते हैं। बहुत ज्यादा शुगर नहीं है तो तीन महीने तक भी नहीं कंट्रोल हुआ तो एक दवाई ऐड करेंगे, नहीं हुआ तो दूसरी दवाई, नहीं हुआ तो तीसरी दवाई, नहीं हुआ तो लास्ट में इंसुलिन देना ही पड़ता है। तो एक याद रखिए कि इंसुलिन एक अमृत है, इंसुलिन एक जीवदान है मनुष्य के लिए। जब तक इंसुलिन नहीं बना था, लाखों लोग करोड़ों लोग मर जाते थे जिसको भी डायबिटीज हुआ मर जाते थे। लेकिन आज जब से इंसुलिन बना, आज से 90 ईयर्स हो गया इंसुलिन बनने के बाद, आज लाखों करोड़ों लोग इंसुलिन के कारण जिंदा है। तो बहुत लोग आपको बहकाएंगे, अरे इंसुलिन नहीं लेना वो तो जहर है, अरे इंसुलिन ले लिया आदत हो जाएगा। वास्तव में जो चीज हमारे अंदर नहीं बन रही है वो चीज को हम बाहर से दे रहे हैं, तो वो कोई जहर नहीं है, वो कोई आदत बनाने वाली बात नहीं है। आप रोज ब्रश करते हैं? करते हैं सभी? जो नहीं करते हैं हाथ उठाइए। सभी ब्रश करते हैं, ठीक है। आप कभी सोचा जिंदगी में, अरे रोज रोज क्या ब्रश करना है, आदत हो जाएगा, सोचते हैं कभी? कभी ट्रैवल भी करते हैं तो आप टूथपेस्ट ब्रश सब लेके जाते हैं ना, नहीं सोचते हैं कभी आदत हो जाएगा? तो इंसुलिन अगर जिंदा रहने के लिए जरूरत है, अरे आदत हो जाएगा, वो फिर सुई लेके, ये लेके, वाई लेके, कहां जाके, कितनी प्रकार की बातें लोग सोचते हैं। आप डेली ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना पीना खाते हैं डेली? कभी सोचते हैं कि आदत हो जाएगा? डेली खाते हैं ना, डेली नहाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, कभी सोचा कभी ये आदत हो जाएगा नहीं जाऊंगा? तो जिंदगी में जो चाहिए चाहिए, नहीं है तो क्या किया जाएगा। तो इंसुलिन कोई आदत की बात नहीं है, वो आपके लिए जीवन है, जीवदान है। अगर नहीं लेंगे तो कई प्रकार की समस्या आएगी, ऐसी हालत हो जाएगी, बात मत पूछिए। लेकिन इंसुलिन कब देना है, क्या देना है, वो डॉक्टर्स को नॉलेज होता है, आप उसके हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा। हम डिसाइड करेंगे कब आपको दिया जाएगा, कौन सी इंसुलिन ठीक है, क्या है, वो आपको इतना डिटेल नॉलेज आपको नहीं रहेगा, वो सब मैं सार रूप में थोड़ा बता दूंगा। Therefore, the answer is oral hypoglycemic agent or insulin does not matter. It is the control of hyperglycemia. मूल बात है आप कुछ भी करो, चाहे भिंडी खाओ, चाहे करेले की सब्जी खाओ, चाहे नीम खाओ, चाहे मेथी खाओ, चाहे मधुनाशिनी गोली खाओ, चाहे डाइविकन खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, जो भी खाओ, हमारा मकसद है आपका शुगर कंट्रोल होना। क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं है तो खतरा ही खतरा है। तो आप जो करो करो, लेकिन आपका शुगर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, माताओं को नामकरण करना बहुत अच्छा लगता है। एक लड़की है, ये लड़की कभी हंसती ही नहीं है, कभी नहीं हंसती है, सदा देखो तो एकदम सीरियस चेहरा। अगर मैं कहूंगा इसका क्या नाम रखना है, क्या नाम रखेंगे? माताएं बोलिए, इसका नाम अगर दो कहेंगे, जैसे आपकी कोई बच्ची होती है तो उसका नाम रखते हैं ना, नहीं तो इसका नाम क्या रखेंगे, बोलो बोलो। इसका नाम है, इसका नाम है हसीना, कभी हंसती नहीं है इसलिए हसीना, ठीक है। अच्छा, ये एक लड़की है, वो हमेशा क्या करती है, ये हमेशा उसके पिताजी को ना, जब भी पिता को देखती है धक्का लगा देती है, जब भी पिता को देखती है तो धक्का लगा देती है, क्या नाम देंगे? अच्छा, राइट ही बोला, किसने कहा? तो थैंक यू। एक सरदार जी हैं, वो हमेशा पानी के अंदर रहते हैं, हमेशा पानी के अंदर रहते हैं, उसका नाम क्या रखेंगे, क्या नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे? उनका नाम है जलंधर सिंह, उनका नाम है जलंधर सिंह। मान लीजिए वो पानी से बाहर आ जाते हैं तो क्या नाम रखेंगे, पानी से बाहर आ गए तो क्या नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे? अरे नाम तो वही होगा, पानी के अंदर रहे या बाहर रहे। अभी हम सुनेंगे इंसुलिन क्या है। वास्तव में मैं बता रहा था, इंसुलिन एक अमृत है, मानव के लिए एक जीवदान है। जब तक इंसुलिन नहीं बना था, मैं बता रहा था कितने लोग मर जाते थे। ये दो साइंटिस्ट हैं, ये एक सर्जन है बेंटिंग, ये इनका मेडिकल स्टूडेंट था, इसका नाम बेस्ट। ये दोनों मिलके आज से 90 साल पहले 1929 में पहली बार ही इंसुलिन की डिस्कवरी किए। पहले जमाने में जिसको शुगर हो जाता था, लोग सोचते थे किडनी की बीमारी है, और कोई बीमारी है, क्या क्या सोचते थे। पहले जमाने में तो जिसको डायबिटीज होता था ना, उसको कुछ खाने ही नहीं देते थे, क्योंकि जो भी खाता था तो उसको शुगर जाता था, पिसाब में चला जाता था, तो उसको खाने ही नहीं देते थे कुछ भी। वो बेचारा खाना पीना, वो बीमारी से क्या मरेगा, बिना खाए पिए मर जाता था। तो इसलिए आज वो जमाना नहीं है, आज तो आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन कैसे खाना है, क्या खाना है, समझने की बात है। तो इस प्रकार पहले लोग सोचते थे डायबिटीज एक किडनी डिजीज है, आपका क्वेश्चन पेपर में आया था, लेकिन किडनी डिजीज नहीं है ये। वास्तव में ये दोनों एक कुत्ता को पहले एक्सपेरिमेंट किए, उसका जो पेनक्रियास है, अग्नाशय है, उस ग्लैंड को काट दिए, देखे उसका एकदम डायबिटीज हो गया। फिर उसके पेनक्रियास से इंसुलिन लेके फिर उसको जब इंजेक्शन दे दिए, जिंदा हो गया, फिर से एकदम ठीक हो गया, पूरा मरने जा रहा था बच गया। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे वो पेट के अंदर वो ग्रंथि से इंसुलिन बनता है, वो इंसुलिन के कारण ही, वो ठीक से नहीं बनने के कारण ही डायबिटीज होता है। तो देखिए, ये सबसे पहला लड़का जिसका नाम था लियोनार्ड थॉम्पसन, ये पहले बार ही इसको इंसुलिन दिया गया और ये बच गया, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देखिए, ये मां के गोदी में यही लड़का कैसा एकदम पूरा, जैसे कि कुछ नहीं है, खाली हड्डी है, सब कुछ पिघल गया है, एकदम खाली हड्डी है, मरने जैसा हालत था। उसको जब इंसुलिन दिया गया, सिर्फ देखिए दिसंबर 15 को इंसुलिन दिया गया, फरवरी 15 को, सिर्फ 2 महीने के बाद देखिए कैसे स्थिति हो गई। तो ये सबसे पहला, ये विश्व का एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आज मैं आपको ऐसा एक प्रयोग सिखाऊंगा, आप देखना, आप अगर सचमुच दिल से करेंगे, अगर आप 200-250 भाई बहनों में से 10-15 का भी अगर डायबिटीज क्योर हो गया ना, ये वर्ल्ड के लिए एक रिकॉर्ड होगा, आप सभी को नोबेल प्राइज मिलेगा, मैं कहूंगा, सच बता रहा हूं। आप देखना, मेरा तो एक शुभ इच्छा है कि हम भारत में कमाल करके दिखाएंगे, और ये विधि बताऊंगा आपको, आप सभी करना, दिल से करना, हम देखेंगे 2-4-6 महीने 1 साल के अंदर कौन इस पर विजय प्राप्त करता है। तो देखिए, कभी भी जब हम हमारे शरीर में ये जो इंसुलिन है, एक नेचुरल रीति से हार्मोन है जो हमेशा कॉन्स्टेंटली ये सिक्रीट होता रहता है, इसको कहते हैं हम बेसल इंसुलिन, कंटिन्यूअसली सिक्रीट होता है और हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखता है। हम जब जब खाते हैं खाना कुछ भी, तो शुगर उस समय भी इंसुलिन सिक्रीट होता है, जैसे ब्रेकफास्ट लिया, लंच लिया, डिनर लिया, उस समय भी ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट होता है और हमारे शुगर को कंट्रोल कर लेता है। जब किसी को देखिए, नॉर्मली हमारा ब्लड शुगर 100 के आसपास रहता है, जब खाना खाते हैं बढ़ के 130-140 तक मैक्सिमम जाता है, लेकिन किसी को डायबिटीज हो गया तो उसका खाली पेट का ही 150 के आसपास रहता है और खाना खाने के बाद तो 200 के ऊपर भी चला जाता है। तो इंसुलिन वास्तव में हमारा शुगर को कंट्रोल करता है। आज इंसुलिन, पहले जमाने में ये सुअर से या गाय से, उसके पेनक्रियास से निकाल के बनाते थे, इसको एनिमल इंसुलिन कहा जाता था। मैं जब मेडिकल पढ़ता था उस समय ये एनिमल इंसुलिन खूब चलता था, लेकिन देखा गया कि उसका काफी रिएक्शन हो रहा है, कई लोगों को रिएक्शन हो रहा है, तो साइंटिस्ट लोगों ने फिर लेबोरेटरी में इंसुलिन को बनाया, किसी जानवर से नहीं लिया, लेबोरेटरी से। आजकल जो इंसुलिन है लेबोरेटरी से बनता है, तो इसलिए ये बहुत रिफाइंड है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है। इंसुलिन हमारे भारतवर्ष में 2 स्ट्रेंथ में मिलता है, एक होता है 40 यूनिट वाला, दूसरा होता है 100 यूनिट पर एमएल वाला। विदेश में सिर्फ एक वाला मिलता है 100 यूनिट, हमारे भारतवर्ष में 2 प्रकार का होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसलिए गड़बड़ करते हैं, क्योंकि इसके सिरिंज भी अलग अलग होते हैं और कई वेरायटी इंसुलिन बनते हैं। एक होता है बहुत रेपिड एक्टिंग, दूसरा होता है शॉर्ट एक्टिंग, तीसरा होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, फिर एक्सटेंडेड लॉन्ग एक्टिंग, फिर प्रीमिक्स्ड, कई वैरायटी। ये सब बातें आपको जानने की जरूरत नहीं है, जिसको डायबिटीज है, जिसको जो इंसुलिन लेते हैं, कभी फिर आएंगे तो मैं डिटेल बताऊंगा। आजकल 2 वैरायटी का इंसुलिन बनते हैं, आप याद रखिए, एक होता है ह्यूमन इंसुलिन, जो आज विदेश में कोई नहीं लेता है उसको, क्योंकि वो हमारे बॉडी के साथ फिजियोलॉजिकल नहीं है। जैसे हम खाते हैं तो 2 घंटा में मैक्सिमम होके 3 घंटे तक हमारा शुगर उतर आता है, नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये जो ह्यूमन इंसुलिन है, इसको लगाते ही एक तो आधा घंटे के बाद ही काम करना शुरू करता है, और क्योंकि जो इंजेक्शन देते हैं वहां से एब्जर्व होके खून में जाते जाते आधा घंटा लगता है। इसलिए कोई इंसुलिन लेता है तो हम हमेशा कहते हैं कि आधा घंटा पहले लो खाने से पहले, इससे बहुत गड़बड़ होता है। कई लोग इंसुलिन ले लेते हैं, खाना खाना भूल जाते हैं, तो एकदम शुगर डाउन होके चक्कर होके गिर पड़ते हैं। तो और ये 6-8 घंटे तक काम करता है, तो 3 घंटे के बाद जब हमारा शुगर डाउन हो गया फिर इनको हाइपोग्लाइसीमिया होने लगता है, तो कुछ खाओ तुरंत, नहीं तो एकदम शुगर डाउन होने लगता है। तो इसलिए विदेश में ये इंसुलिन को आजकल कोई नहीं यूज करता है। हमारे भारतवर्ष गरीब देश है, लोग सभी एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आजकल भी ये इंसुलिन अभी तक चालू है। लेकिन दूसरा एक इंसुलिन है जिसको हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ये सब लॉन्ग एक्टिंग है, ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है जो बिल्कुल फिजियोलॉजिकल है। आप खाना खाने से जस्ट 5 मिनट पहले लगाओ, या तुरंत लगाओ, या भूल गया तो बीच में लगाओ, या भूल गया तो खाना खाने के बाद भी लगाओ, चलेगा। और जैसे हमारा बढ़ता है शुगर, ऐसे ही वो 2-3 घंटा तक ही काम करता है, तो इसमें शुगर अप डाउन कभी नहीं होता है। थोड़ी सी महंगी है, ह्यूमन इंसुलिन से 2-3 गुना रेट ज्यादा है, जिसके पास पैसा है लेते हैं, शुगर एकदम कंट्रोल रहता है। इस प्रकार कई इंसुलिन होते हैं जो लंबे समय तक काम करते हैं, 12 घंटा 14 घंटा तक, इसको हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं, एनपीएच जो लेते हैं समझते होंगे। तो ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। कई इंसुलिन होते हैं जो मिक्स्ड इंसुलिन होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग, ये दोनों मिक्स रहता है, ताकि तुरंत भी कवर करे, लंबे समय तक भी कवर करे। ये सब आता है मिक्स्टार्ड के नाम से आता है, लेकिन वो भी फिजियोलॉजिकल नहीं है, विदेश में कोई नहीं यूज करता है। आजकल एक इंसुलिन मिलता है जो लॉन्ग एक्टिंग है, एकदम सस्टेन्ड होके काम करता है, जिसको हम बेसल इंसुलिन कहते हैं, लेंटस के नाम से, डेटेमिर के नाम से, लेवेमिर के नाम से अवेलेबल है, जो एक बार लगा दो तो 24 घंटा शुगर को ऐसे कंट्रोल करके रखता है। जब जब खाओ फिर शॉर्ट एक्टिंग लगाओ, लॉन्ग रैपिड एक्टिंग लगाओ, तो एकदम कंट्रोल हो जाता है। ये सारी बातें वास्तव में आपको इंटरेस्ट नहीं आता होगा, समझ में भी नहीं आएगा डिटेल बातें। कहने का मतलब है इंसुलिन पहले जमाने में हम सिरिंज में लगाते थे, कहीं लेके जाओ, वायल उठा के जाओ, सिरिंज लेके जाओ, लेकिन आजकल पेन मिलते हैं, ऐसे पेन, जैसे हम ये फाउंटेन पेन है, ऐसे पेन है, उसके अंदर कैटरी जो इंसुलिन रहता है, कहीं लेने में बहुत सहज है, फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं है, उसकी नीडिल इतनी बारीक है, आजकल बहुत सहज हो गया है। तो इंसुलिन लेना भी पड़ता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, बहुत सहज है। मेरे पास इतने छोटे छोटे 25 बच्चे हैं, वो खुद लगाते हैं, ऐसे लेके ऐसे जस्ट पकड़ लो, कोई चींटी जैसा भी नहीं चुभता है, इतना सहज है। लेकिन कई लोगों ने, फिर कई साइंटिस्ट ऐसे भी तरीका निकाले जिसमें नीडिल नहीं होते, जेट इंजेक्टर कहते हैं, लेकिन वो इतना प्रेशर से काम करता है तो बहुत पेन होता है, वो नीडिल से भी ज्यादा पेन होता है, इसलिए वो उसका पॉपुलैरिटी नहीं है, ये अभी आजकल कोई नहीं यूज करता है। इंसुलिन पंप्स आते हैं, छोटा सा मोबाइल जैसे, एक पेजर जैसा, उसमें एक कैनूला पेट में डाल दिया जाता है, उसमें कंटिन्यूअसली लगातार इंसुलिन जाता रहता है बॉडी में, जैसे सिक्रेट होता है, जब जब खाए थोड़ा सा उसमें बोलस दे दिया जाता है। जिसके शुगर बहुत अप डाउन होता है उसको हम ये देते हैं, लेकिन ये लाखों रुपया का है, ब्लॉक हो गया तो फिर गड़बड़ है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसको मेंटेन करने के लिए भी समझ चाहिए, पैसा भी चाहिए, हर एक की बस की बात नहीं है। ये ऐसे है इंसुलिन पंप। इंसुलिन जब भी गोली करके, कैप्सूल करके खाते थे तो ये एक्चुअली हजम हो जाता था, इसलिए अभी तक भी इतने साल हो गया, साइंटिस्ट लोग अभी तक भी नहीं बना पाए कोई गोली कैप्सूल फॉर्म में इंसुलिन को, क्योंकि खाते ही ये हजम हो जाता है, इसलिए आज तक हम इसको इंसुलिन इंजेक्शन रूप में दे रहे हैं। लेकिन उसका अल्टरनेट तरीका जो भी हो सकता है लोगों ने ट्राई किया, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं रहा। जैसे दमा का मरीज पॉप लेता है, इसी प्रकार इंसुलिन को भी ऐसे पॉप में यूज किया गया, लेकिन किसी को सर्दी जुकाम है, किसी को खांसी है, तो ठीक से ऑब्जर्व नहीं होता है, काम नहीं करता है, फिर भी उसका शुगर अप डाउन होता रहता है, इसलिए ये भी छोड़ दिया गया, कोई नहीं यूज करता है। ऐसे पेच आते हैं, लगा देते हैं चमड़ी में, उससे भी इंसुलिन धीरे 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 ऑब्जर्व होता है, लेकिन कहीं ठंडी का मौसम है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो काम नहीं करेगा, तो कहीं ज्यादा पसीना छूटता है तो निकल जाता है पेच, तो इसलिए ये भी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ये क्या चीजें जानते हैं? जब ब्लड टेस्ट करते हैं, ये पिन, कोई सुई ऐसे फोड़ने के बजाय, इसको ऑटोलेट कहते हैं, इसमें एक स्प्रिंग होता है, ऐसे लगा के जस्ट स्प्रिंग दबा दो, फट से मारता है, दर्द नहीं होता है, ब्लड आता है। ग्लूकोमीटर सभी के पास होना चाहिए, चाहे आप इंसुलिन लो नहीं लो, लेकिन जो इंसुलिन लेते हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर एक ग्लूकोमीटर रखिए। और ग्लूकोकार्ड मिनी बता रहा था, आर्करे कंपनी का, बहुत अच्छा, मैं हमारे हॉस्पिटल में सब कुछ यूज करते हैं, अच्छा रिजल्ट है। अगर बेयर कंपनी का कॉन्कर नाम से आता है, कॉन्टोर नाम से आता है, वो अच्छा है, अच्छे कंपनी का आप रखेंगे तो वो धोखा नहीं देगा, सही रिपोर्ट आएगा। हमेशा कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं करते हैं तो ग्लूकोमीटर जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि कभी भी आपका शुगर अप डाउन होगा तो चेक करेंगे तो कम से कम आप हाइपोग्लाइसीमिया से बचेंगे, कभी बेहोश होने से बचेंगे। नहीं तो कभी कहीं बेहोश हो गया, गिर पड़ा ना, हमारे देश में क्या करते हैं लोग, कोई बेहोश हो गया तो सोचेंगे कि इसको मिर्गी बात हो गया और जूता लेके सुंघाएंगे ऐसे नाक में जाके। तो इसलिए हमारे देश में तो लोग ऐसे वैरायटी लोग हैं दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप बच्चे हैं, ग्लूकोमीटर रखिए, अपने आप को सेफ रखिए। तो देखिए वास्तव में इंजेक्शन, इंसुलिन इंजेक्शन लेना इतना पेनफुल नहीं है जितना पेनफुल उसका डर। हाय इंसुलिन, बाप रे मैं तो सुई कभी नहीं लगाया था, और डर ही ज्यादा पेनफुल है। वास्तव में इंसुलिन बिल्कुल पेनफुल नहीं है, आजकल वो पेन तो बहुत सहज है, छोटे छोटे बच्चे भी लेते हैं। तो इंसुलिन कैसे लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, सिरिंज कितने प्रकार के हैं, ये सब बातें वास्तव में आपको सबको सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंसुलिन लेते हैं उनको मैं कभी आएंगे तो मैं डिटेल, फिर हॉस्पिटल में हम ट्रेनिंग देते हैं कैसे लगाना होता है, कैसे वायल में सिरिंज वायल से लोड करना होता है, पेन को कैसे यूज करना है, ये सब बहुत सारी बातें हैं, ये सब आपको जानकारी की जरूरत नहीं है। इंसुलिन लगाना बहुत सहज है, सिंपल है, और कहाँ कहाँ लगाना होता है वो भी साइट बताया गया। आपके नाभि के 2 इंच छोड़ दीजिए, 2 उंगली छोड़ दीजिए, चारों तरफ ले सकते हो, थाई में ले सकते हो, बटक में ले सकते हो, हाथ में ले सकते हो, लेकिन कई कभी कभी यहां भी लगाते हैं लोग, तो यहां भी फोड़ते हैं, कहीं भी फोड़ नहीं देना है। और वो मसल्स में नहीं लगाना होता है, चर्बी में देना होता है। सिरिंज भी 2 प्रकार के आते हैं, ये लाल वाले वास्तव में 40 यूनिट वाला, ये 100 यूनिट वाला। अगर वायल में देखिए क्या लिखा है, 40 लिखा है कि 100, जो लिखा है उसी सिरिंज में लेना चाहिए। अगर अदली बदली किया बहुत गड़बड़ हो जाएगा। एक भाई आया था 2-3 साल पहले की बात है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा तो कभी शुगर कंट्रोल नहीं होता, 400 शुगर से कभी कम नहीं। मैं कहता क्या करते हो, तो इंसुलिन लेता हूं। कितना लेते हो, मैं तो सिरिंज भर भर के पूरा ले लेता हूं फिर भी नहीं ठीक होता है। बोला कहाँ कहाँ दिखाए हो, कहता मैं सूरत में दिखाया, अहमदाबाद में दिखाया, बॉम्बे में भी दिखाया, मेरा तो कभी कंट्रोल होता ही नहीं है डॉक्टर साहब। बोला अच्छा, मैं बोला देखूं तो सही आपका क्या सिरिंज लेते हो क्या। मैं देखा तो वो ट्यूबरकुलिन सिरिंज था, वो इंसुलिन का सिरिंज ही नहीं था, कुछ भी इंसुलिन किसी में लेके कुछ भी लेके दे रहा है, कैसे कंट्रोल होगा। फिर उनको जब बताया सही रूप में, उसको गाइड करके जब दिया, ठीक हो गया। कहता है मैं 10 साल से कहां कहां नहीं भटका, कोई भी डॉक्टर मेरा सिरिंज नहीं देखा अभी तक, और मुझे ये मुफ्त मिलता है कहीं से, तो मैं लाके उसी से ही ठोकता था, पूरा पूरा भर भर के ठोकता था, कभी भी मेरा कंट्रोल नहीं। तो डॉक्टर को फुर्सत ही नहीं है उसका सिरिंज देखें और उसका वायल देखें क्या ले रहा है। बहुत सारे हजारों रुपया फीस लेते हैं, बड़े बड़े एंडोक्राइनोलॉजिस्ट लिख देते हैं इंसुलिन लेना, भर्ती भी होते हैं, लेकिन कैसे लगाना कहां लगाना कोई नहीं बताता है। फिर मेरे पास आते हैं डॉक्टर साहब इसको कैसे लगाना होता है, हजारों रुपया फीस देके किसी को पास फुर्सत ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब है हम हॉस्पिटल में पूरा ध्यान देके ये सब बताते हैं, सिखाते हैं कब लेना कैसे लेना, आपको कैसे जीवन जीना है सिखाते हैं फिर भेजते हैं। सिरिंज कभी अदली बदली नहीं करना। कभी कभी ट्रैवल करते हैं तो अच्छा आपको भी डायबिटीज है क्या, अच्छा आप सिरिंज थोड़ा दे दो ना मैं भी लगा देता हूं थोड़ा। ये खाने पीने की चीज नहीं है जो शेयर करके खा लो, सिरिंज कभी दूसरे से लगाना नहीं है, इन्फेक्शन होगा एक दूसरे की क्या बीमारी होगी होगा, तो इसलिए ये सब चीजें बहुत ध्यान देना जरूरी है। कभी भी इंसुलिन अगर लेते हैं तो कभी फ्रीजर में नहीं डालना है, आइसक्रीम बन जाएगा, जहां आइसक्रीम बनाते हैं वहां कभी भी इंसुलिन नहीं रखना है, इंसुलिन हमेशा साइड में नीचे रखा जाता है। कभी भी कभी किचन में कहीं जहां धूप एकदम पूरा होता है, जहां बहुत गर्मी होती है, कार के एकदम डिक्की में ऐसे जगह पे नहीं रखना होता है। ट्रैवलिंग करते हैं कहीं भी जाते हैं तो आपका वैनिटी बैग में रखना होता है। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं कितना सुनाऊंगा आपको, ये सब बातें आप समझ नहीं पाएंगे। जिसको इंसुलिन जो लेते हैं उनको मैं डिटेल समझा दूंगा। आपको ये सब दिखाने का मतलब है कि कभी भी जीवन में इंसुलिन लेने का नौबत आता है कृपया मना नहीं कीजिए, इंसुलिन लेने से ही सेफ्टी है, आपका कल्याण है। लेकिन बताया अगर प्रॉपर डॉक्टर हैं ठीक देते हैं तो बहुत अच्छा। कभी भी आपका कुछ गड़बड़ होता है, कुछ नहीं होता है, नहीं समझ में आता है, आ जाइए माउंट आबू, वहां सब ठीक हो जाएगा, बाबा ठीक कर देगा आपका। एक सरदार जी दूसरे सरदार जी को देख रहे थे, ये कुछ जमीन के एक खड्डा खोद के गाड़ रहे हैं। तो बोले कि अरे क्या गाड़ रहा है, क्या गाड़ रहा है? तो बोला कि ड्राइविंग लाइसेंस। क्यों गाड़ रहा है? क्यों? अरे ड्राइविंग लाइसेंस को कोई गाड़ता है क्या? तो कहते हैं इट हैज एक्सपायर्ड। तो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया बोले थे। कोई मर जाने के बाद गाड़ देते, ड्राइविंग लाइसेंस भी मर गया कहते। थैंक यू वेरी मच। वास्तव में बहुत ये दवाई बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा लेसन है। ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आएगा, आपका ऊपर उठ जाएगा। ये सब डॉक्टर्स लेवल जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको समझाने की बात है, जस्ट कंप्लीट करने के सेक में बताया। आपको ये याद रखना है कि जो इंसुलिन सेंसिटाइजर है, जो हमारे जो इंसुलिन सिक्रिटोगॉग है, अर्थात जो पेनक्रियास को धकेलते हैं, वो गोली कम से कम आधा घंटा पहले लगाना है। ह्यूमन इंसुलिन लगाते हैं तो आधा घंटा पहले लगाना है, ताकि वो दवाई जाके काम करेगा, ताकि आपका शुगर बढ़ने से पहले रोकेगा। लेकिन अगर तुरंत गोली खाया और तुरंत खाना खा लिया तो आपका शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगा, एकदम सुट हो जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, कभी भी आप अगर शुगर की दवाई लेते हैं तो आधा घंटा पहले लेना चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट पहले। कई दवाई होती है जो खाने के साथ खाया जाता है, कहेंगे डॉक्टर कहेंगे आपको खाने के बीच में खाओ, जो खाने के बाद हमारे अंदर एक कोटिंग बना देते हैं ताकि शुगर जल्दी एब्जॉर्ब ना हो, वो गोली को हमेशा खाने के बीच में खाना होता है। दो गट्टी खाया, बीच में खा लिया एक गोली। कई गोली होते हैं खाने के बाद खाया होता है। मेटफॉर्मिन, वो खाने से पेट में गैस होता है, डिस्पेप्सिया होता है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि इसको खाने के बाद खाओ। तो कौन सी दवाई पहले खाना है, कौन से बीच में खाना है, कौन से बाद में खाना है, वो सारे डॉक्टर्स आपको बताएंगे। समझ के अच्छी रीति से खाएंगे, शुगर कंट्रोल होगा। शुगर की दवाई हमेशा सवेरे सवेरे लेना, खाने ब्रेकफास्ट से पहले बहुत अच्छा। कई तो सवेरे नहीं लेते हैं, लंच से पहले लेते हैं कि लंच के बाद लेते हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि सवेरे सवेरे ही शुगर बढ़ता है, सवेरे सवेरे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर की दवाई भी हमेशा उठते ही लेना है। आंख खुला, बाबा को गुड मॉर्निंग किया, आपके बेड साइड में ब्लड प्रेशर की दवाई और पानी का ग्लास होना चाहिए, आप तुरंत ले लीजिए। उसी समय ही हार्ट अटैक होता है, उसी समय सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग, तो ये सारी दवाइयां सवेरे। कोलेस्ट्रॉल की दवाई हमेशा रात को खाना होता है। खून को पतला करने वाली दवाई जो होती है एस्पिरिन, वो हमेशा खाने के बाद खाया जाता है, लंच के बाद या डिनर के बाद, खाने से पहले नहीं खाइए, एसिडिटी होगी। तो कई बातें जानकारी चाहिए, तो कब खाना है डॉक्टर को अच्छी तरह से पूछ के आप लेंगे तो उसमें आपका फायदा होगा। नहीं तो दवाई खर्च करते होंगे, खाते होंगे, टाइमली नहीं खाया, ठीक से नहीं खाया, काम नहीं करता है ठीक से। तो बहुत सारी बातें हैं। इंसुलिन अगर लेते हैं तो इंसुलिन हमेशा आधा घंटा पहले लीजिए, ह्यूमन इंसुलिन। परंतु आजकल जो रैपिड एक्टिंग मिलता है, जो एनालॉग मिलता है, थोड़ी महंगी है, लेकिन तुरंत लगाओ, तुरंत खाओ, बहुत अच्छा है। जो एफोर्ड कर पाते हैं वो लेना ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए जी। लेंटस इंसुलिन ये एनालॉग इंसुलिन है, जो हमारे शरीर में धीरे 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 काम करता है, धीरे धीरे काम करता है। उसका खाने पीने से कोई रिलेशन नहीं है। इंजेक्शन देके 24 घंटा उसका असर होता है। तो रात को लेते हैं तो उसी समय रात को लेना ठीक है, सवेरे लेते हैं तो सवेरे लेना